अब आप साइक्लोन अर्थात चक्रवात के आगे का रिकॉर्डिंग सुने। शीत वाताग्र के अग्रभाग में झंझावातों की उत्पत्ति होती है, उष्णाद्र वायु के बलपूर्वक ऊपर उठाए जाने के कारण आकाश में कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ उत्पन्न होते हैं, जिनसे मूसलाधार वृष्टि होती है। शीत वाताग्रों का झुकाव पीछे होने के कारण उनके आगमन की सूचना मेघों आदि से नहीं मिलती है। शीत वाताग्रों के निकट आ जाने पर तापमान में आकस्मिक गिरावट तथा सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि अंकित की जाती है। वायुदाब में वृद्धि एक अन्य विशेषता है। कपासी या कपासी वर्षा मेघों से वर्षा थोड़ी देर होकर रुक जाती है। शीत वाताग्र के गुजर जाने पर मौसम साफ हो जाता है, किंतु तापमान में भारी गिरावट अंकित की जाती है। पवन की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। ऐसे समय शीत लहरी चलने लगती है। एबी रेखा पर मौसम की दशाएं। चक्रवात के केंद्र से उत्तर वाताग्रों के अभाव में उष्ण वातांश वार्म सेक्टर की तरह मौसम नहीं होता। इस खंड में वाताग्र धरातल से कुछ ऊंचाई पर होते हैं, जिससे मेघों तथा उनसे होने वाली वृष्टि पर उनका नियंत्रण रहता है। यहाँ पवन प्रवाह में वामवर्त परिवर्तन होता है। पवन प्रवाह उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से होता है। वर्षा अल्पकालिक और मूसलाधार होती है। मौसम शीघ्र साफ हो जाता है। चक्रवात केंद्र से अधिक उत्तर की ओर आकाश में केवल मेघ छाए रहते हैं, जिनसे वृष्टि नहीं होती। सहकारी चक्रवात सेकेंडरी साइक्लोन। संरोधन के उपरांत सामान्यतया चक्रवात का विघटन हो जाता है, किंतु कभी-कभी मुख्य चक्रवात के दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में एक सहकारी चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पूर्ण विकसित चक्रवात बन जाता है। इस प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक श्रृंखला सी बनी रहती है, लेकिन इनका आकार क्रमशः छोटा होता जाता है और इनका मार्ग निम्न अक्षांशों की ओर खिसकता जाता है। ज्ञातव्य है कि इन चक्रवातों का विकास अपेक्षाकृत कम समय में होता है। प्रत्येक ध्रुवीय वाताग्र पर 2 से 5 सहकारी चक्रवात एक दूसरे के विघटित होने पर उनसे उनके किनारे पर बनते जाते हैं। इस प्रकार चक्रवातों की एक श्रृंखला समाप्त होने पर दूसरी श्रृंखला का आरंभ हो सकता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव। आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय वाताग्रों में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। सीजी रॉस्बी के द्वारा किए गए अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि उच्च स्तरीय वायुमंडल में दीर्घ तरंगों 4 से 6 हजार किलोमीटर लंबी के अलावा कुछ लघु आकार की तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। ग्लोब के चारों ओर 3 से 6 तरंगें पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति मध्य तथा ऊपरी विक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में भी होती है, तथा इनका मध्य अक्षांशीय वायुमंडलीय विक्षोभों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब ये तरंगें सर्पाकार न होकर लगभग सीधी रेखा में होती हैं, तब धरातल के समीप वायुमंडल में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु दीर्घ आकार वाले विसर्प, मेंडर, लघुतर तरंग दैर्ध्य वाले विशाल आयाम एम्पलीट्यूड के तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे वायुमंडल के ऊपरी भाग में द्रोणियों और कटकों का विकास होता है। इनके कारण ध्रुवीय वायु राशियों का निम्न अक्षांशों की ओर तथा उष्ण वायु पुंजों का उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरण होता है, जिससे चक्रवातीय प्रणाली में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। उच्च स्तरीय द्रोणी के अग्रभाग में धरातल के निकट चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उच्च स्तरीय तापमान प्रवणता तथा वायु के वेग के संबंध में किए गए अनुसंधानों से ध्रुवीय वाताग्र तथा तरंग चक्रवात के संबंध पर काफी प्रकाश पड़ता है। धरातली चक्रवातों को बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिसरण एवं अपसरण को उत्पन्न करने में उच्च स्तरीय पवन प्रवाह प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चक्रवाती प्रणाली के ऊर्जा स्रोत के रूप में ऊंचाई पर पाया जाने वाला पवन प्रवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्र की अनुपस्थिति में भी हो जाती है। वास्तव में ऐसे गर्त चक्रों के विकास में उच्च स्तरीय पछुआ हवाओं में उत्पन्न द्रोणी सहायक होती है। इसके विपरीत कभी कभी ऊपरी विक्षोभ मंडल में उत्पन्न निम्न दाब केंद्र के कारण ध्रुवीय वाताग्र में मोड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे तरंग चक्रवात का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली तथा विनाशकारी तूफान होते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इन्हें हरिकेन, चीन, फिलीपींस तथा जापान में टाइफून तथा हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन तूफानों को विली विलीज कहते हैं। जापान में इनको टाइफू कहा जाता है। इन तूफानों के नाम में प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद इन सभी में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायु का एक ऐसा प्रचंड एवं गहरा चक्रवाती भ्रमिल होता है, जिसमें धरातल के निकट वायु का चक्करदार केंद्रोन्मुखी प्रवाह मध्यवर्ती स्तरों में तीव्र गतिक ऊपर की ओर प्रवाह तथा शीर्ष भाग में वायु का वेगपूर्ण निस्राव आउटफ्लो पाया जाता है। ऋतु पत्रकों पर वृत्ताकार एवं सघन समदाब रेखाओं से घिरे हुए न्यून दाब क्षेत्र के रूप में इनका प्रदर्शन होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य डोलड्रम के निकट महासागरों पर होती है। हरिकेन अथवा टाइफून भूमध्य रेखा पर या उसके अधिक निकट कदापि उत्पन्न नहीं होते। इसका मुख्य कारण वहां निश्चित रूप से कोरियोलिस बल का अभाव अथवा उसका अत्यंत छीण होना माना जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ऊपर इन चक्रवातों का अभाव मौसमविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। संभवतः इसका मुख्य कारण यह है कि अंतरोष्ण अभिसरण कटिबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा के दक्षिण बहुत दूर नहीं जा पाता है। संरचना स्ट्रक्चर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास सामान्य रूप से 500 से 800 किलोमीटर तक पाया गया है। वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए इनके केंद्र पर अल्पतम वायु दाब 920 से 950 मिलीबार तक अंकित किया गया है। किसी किसी चक्रवात के केंद्र पर 914 मिलीबार वायु दाब अंकित किया गया है। केंद्र के समीप वायु दाब प्रवणता अत्यधिक प्रपाती होने के कारण पवन का वेग 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अत्यंत प्रचंड चक्रवातों के केंद्रीय भाग के निकट पवन का वेग इससे भी अधिक होता है। इन चक्रवातों की ऊंचाई धरातल से 10,000 मीटर से 15,000 मीटर तक होती है। 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई तक चारों ओर वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, किंतु ऊपरी क्षोभ मंडल में 10,000 मीटर से 15,000 मीटर की ऊंचाई तक इन चक्रवातों के भीतर से बाहर की ओर वायु का निस्राव होता है। यही कारण है कि केंद्र पर वायु के अभिसरण के बावजूद वायु दाब में कमी बनी रहती है। कृत्रिम उपग्रहों से इन तूफानों के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे चक्रवात केंद्र के चारों ओर मेघों की सर्पिल पट्टियां, स्पाइरल बैंड्स पाई जाए फैली हुई दिखाई पड़ती हैं। मेघों की इन पट्टियों के द्वारा कपासी वर्षा मेघों के शीर्ष भाग का प्रदर्शन होता है, जिनकी ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। आकार एवं प्रचंडता में विभिन्नता के कारण विभिन्न चक्रवातों में इन मेघ पट्टियों की संख्या समान नहीं होती। चक्रवात चच्छू, आई ऑफ द साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना में सबसे अधिक विलक्षण बात यह होती है कि इनके केंद्र पर शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसके ऊपर आकाश प्रायः मेघ रहित होता है। इस वृत्ताकार क्रोड प्रदेश को चक्रवात चच्छू कहा जाता है। इस भाग में पवन का वेग बिल्कुल कम हो जाता है। इस क्षेत्र में पवन मंद गति से विभिन्न दिशाओं से चलता है। सागर तल पर उत्पन्न तरंग एक दूसरे को काटती हुई चलती हैं। इस भाग में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है। चक्रवात चच्छू का व्यास साधारणतः लगभग 24 किलोमीटर होता है, किंतु विभिन्न चक्रवातों में व्यास की लंबाई 8 से 80 किलोमीटर तक अंकित की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र के शांत वातावरण का कारण यहाँ पर होने वाले वायु का अवतलन सब्सिडेंस है। उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित 5 दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, चक्रवात के केंद्र की आरोही वायु का तापमान अधिक होना चाहिए तथा उसमें आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, ताकि संघनन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो चक्रवात के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसीलिए इन चक्रवातों की उत्पत्ति उन महासागरों के ऊपर होती है जिनके तल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ग्रीष्मकाल के अंत में सागर तल का तापमान उच्चतम होने से चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा, कोरियोलिस बल से उत्पन्न आवर्तिका वर्टिसिटी चक्रवाती परिसंचरण का आवश्यक अंग है। विषुवत रेखा से 5 डिग्री अक्षांश के भीतर कोरियोलिस बल के अभाव के कारण प्रवाही पवनों में चक्रता उत्पन्न नहीं हो पाती, जिससे यहां चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। तीसरा, जिस पवन धारा में चक्रवात उत्पन्न होता है उसमें ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन अधिक छेड़ होना चाहिए, जिससे आवर्त उत्पन्न होने में बाधा न पड़े। अंतरोष्ण अभिसरण क्षेत्र में उत्पन्न लघु आकार के वायुमंडलीय भ्रमिल चक्रवात निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए न्यून वायु दाब केंद्र अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्रत्येक चक्रवात के ऊपर 9000 से 15000 मीटर ऊंचाई पर उच्च वायु दाब क्षेत्र होना चाहिए, ताकि धरातल से ऊपर उठने वाली वायु को बाहर फेंकने की प्रक्रिया जारी रहे और धरातल पर केंद्र भाग की वायु दाब में कमी बनी रहे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वृष्टि, प्रेसिपिटेशन इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। चक्रवातों के केंद्रीय भाग के चारों ओर एक सक्रिय पेटी में अधिकांश वर्षा संकेंद्रित होती है। चक्रवातों की तीव्रता, आकार एवं विस्तार के अनुसार वर्षा की वास्तविक मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। चक्रवातों के मार्ग में पर्वतीय अवरोध से वृष्टि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अयनवर्ती क्षेत्र के अधिकांश भागों में ग्रीष्मकाल के अंत तथा शरद ऋतु के प्रारंभ में इन्हीं चक्रवातों से अधिकांश वर्षा होती है। उष्णाद्र वायु राशियों के आकस्मिक आरोहण के कारण चक्रवातों से थोड़े समय में भारी वर्षा होती है। साधारण तौर पर एक चक्रवातीय तूफान से 12 से 15 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। चक्रवातों का संचलन, मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊपरी क्षोभ मंडल के पवनों के साथ पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। इनकी औसत गति 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन चक्रवातों के द्वारा कुछ विशेष मार्गों का अनुसरण किया जाता है। संभवतः गर्म समुद्री धाराएं इनके मार्गों को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। महासागरों के पश्चिमी किनारे पर पहुंचकर ये चक्रवात ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। ये चक्रवात प्रायः महासागरों पर उत्पन्न उच्च वायु दाब के क्षेत्रों के पश्चिम की ओर से अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार पछुआ पवनों की पेटी में पहुंचकर ये पूरब की ओर चल पड़ते हैं। अयनवर्ती क्षेत्रों से दूरी बढ़ने के साथ ही उष्णाद्र वायु की आपूर्ति में कमी हो जाती है, अतः आवश्यक ऊर्जा के अभाव में चक्रवात का शीघ्र विघटन हो जाता है। स्थल भाग पर प्रवेश करने के उपरांत इनकी शक्ति के क्षीण होने का एक अन्य कारण पृष्ठ घर्षण है। यह स्मरणीय है कि मध्य अक्षांशों में प्रवेश करने के उपरांत इनमें ध्रुवीय वायु राशि खींचकर मिल जाती है, जिससे इनकी विशेषताएं शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों जैसी हो जाती हैं। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इन आयनवर्ती चक्रवातों का जीवन काल लगभग एक सप्ताह का होता है। इस अवधि में उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकास की चार अवस्थाओं से गुजरता है, जो निम्नांकित है। पहला, प्रारंभिक अवस्था। दूसरा, पूर्व प्रौढ़ावस्था। तीसरा, प्रौढ़ावस्था तथा चौथा, विघटन की अवस्था। चक्रवातों का विघटन स्थल खंडों अथवा समुद्री जल के ऊपर प्रारंभ होता है। चक्रवातों का प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। विश्व के निम्नलिखित 6 प्रदेशों में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिनसे प्रायः सभी उष्णकटिबंधीय अथवा उपोष्णकटिबंधीय सागरों पर स्थित है। पहला, उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर। दूसरा, उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्वी अयनवर्ती क्षेत्र, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। तीसरा, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी अयनवर्ती क्षेत्र, फिलीपींस, चीन सागर तथा जापान। चौथा, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर। पांचवा, दक्षिण हिंद महासागर, मेडागास्कर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक का क्षेत्र। छठा, दक्षिणी प्रशांत महासागर, समोआ तथा फिजी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र, जिसमें दो विशेष उल्लेखनीय है। पहला, उत्तरी पश्चिमी तट के निकट तिमोर सागर। दूसरा, 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी तट के बीच स्थित क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय तूफान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। उष्णकटिबंधीय तूफानों को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। पूर्वी पवनों में उत्पन्न तरंगे, ईस्टर्ली वेव्स। दूसरा, अयनवर्ती गर्त चक्र, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। तीसरा, अयनवर्ती तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तथा चौथा, हरिकेन अथवा टाइफून। पहला, पूर्वी पवन तरंगे, ईस्टर्ली वेव्स, ट्रेड विंड में उत्पन्न तरंगाकार विक्षोभों को ईस्टर्ली वेव्स कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महासागरों के ऊपर होती है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इनके कारण ऋतु पत्रकों, वेदर चार्ट पर समदाब रेखाओं की दंतुरता, इंडेंटेशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक छिछली वायु दाब द्रोणिका की उत्पत्ति का बोध होता है। ये तरंगें प्रतिदिन 320 से 480 किलोमीटर की राशि की गति के से पूरब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं। द्रोणिका रेखा के अग्रभाग अथवा पश्चिम की ओर पवनों में अपसरण, डाइवर्जेंस की प्रवृत्ति पाई जाती है, जहां हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम शुष्क और स्वच्छ होता है। किंतु इस तरंग विक्षोभ के पृष्ठभाग अथवा पूरब की ओर वायु का अभिसरण, कन्वर्जेंस होने से उष्णाद वायु ऊपर उठती है, जिसके फलस्वरूप दूर दूर तक संवहनी वृष्टि होती है और तड़ित झंझाओं, थंडर स्टॉर्म का निर्माण होता है। इन तरंग विक्षोभों की उत्पत्ति सन्मार्गी पवनों तथा डोलरम की सीमा पर होती है। इनके अग्रभाग में मौसम स्वच्छ तथा पृष्ठभाग में कपासी एवं कपासी वर्षीय मेघों से मूसलाधार वर्षा तथा तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति होती है। कभी कभी महासागरों के पश्चिमी भागों के ऊपर इन तरंग विक्षोभों की प्रचंडता में वृद्धि होकर इनसे हरिकेन जैसे तूफान बन जाते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न तरंग विक्षोभों का विशेष अध्ययन किया गया है। कभी कभी उत्तरी प्रशांत महासागर में भी इनकी उत्पत्ति होती है। कैरिबियन सागर में ग्रीष्म काल में 3 दिनों तथा प्रशांत महासागर में गुआम के निकट 2 दिनों के अंतर पर इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति में उच्च बारंबारता का कारण ट्रेड विंड्स में तापमान व्युत्क्रमणता, टेम्परेचर इन्वर्जन स्तर का क्षीण होना बताया गया है। वस्तुतः द्वीपों के धरातल से पवनों के घर्षण के कारण इनका निर्माण प्रक्रिया का आरंभ होता है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय निम्न दाब द्रोणिकाओं में होती है और इनका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण होता है। ये तरंगे धरातल के निकट दुर्बल होती हैं, किंतु 4000 मीटर की ऊंचाई पर इनका पूर्ण विकास हो जाता है। अयनवर्ती गर्त चक्र, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। पेटरसन के मतानुसार गर्त चक्र एक ऐसा निम्न दाब केंद्र होता है जिसमें पवन का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होता है। ऐसे गर्त चक्र उष्णकटिबंध की उष्णाद्र वायु में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति सबसे अधिक अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में होती है। ट्रेड विंड्स की पेटी में ऐसे गर्त चक्र बहुत कम उत्पन्न होते हैं। इनमें से अधिकांश तो दुर्बल विक्षोभों के रूप में ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु प्रबल तूफानों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तीसरा, अनवर्ती तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। इन प्रबल तूफानों में पवन का वेग 40 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ग्रीष्मकाल में ऐसे तूफानों की उत्पत्ति के लिए अधिक अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में ऐसे तूफान प्रायः उत्पन्न हुआ करते हैं। इन्हें मानसून गर्त चक्र, मानसून डिप्रेशन भी कहा जाता है। फिलीपींस तथा पश्चिमी द्वीप समूह में भी ऐसे तूफानों की उत्पत्ति होती है। इन तूफानों से भारी वर्षा होती है तथा मौसम में परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं तूफानों में से कई विकसित होकर प्रबल विध्वंसकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का रूप धारण कर लेते हैं। हरिकेन अथवा टाइफून, ये वास्तविक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनकी प्रचंडता जनधन की अपार क्षति का कारण बनती है। इन चक्रवातों का विशेष महत्वपूर्ण होने के कारण इनका स्वतंत्र विवेचन किया गया है। प्रचंड स्थानीय तूफान, वायलेंट लोकल स्टॉर्म्स। कुछ ऐसे तूफान होते हैं जो आकार में तो छोटे होते हैं, किंतु उनकी प्रचंडता एवं विनाशकारी शक्ति बड़ी भयावह होती है। ऐसे तूफान स्थानीय होते हैं, किंतु इनमें इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि स्थानीय रूप से इनका महत्व अधिक विस्तार वाले अन्य वायुमंडलीय विक्षोभों से बहुत अधिक होता है। प्रचंड स्थानीय तूफान शीर्षक के अंतर्गत तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडो तथा जल स्तंभों का विवेचन किया गया है। तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म्स। तड़ित झंझा एक प्रचंड वायुमंडलीय विक्षोभ होता है जिसमें मेघ गर्जन, वेगवान पवन तथा विद्युत एक साथ विद्यमान रहते हैं। बायर्स के अनुसार तड़ित झंझा संवहनी बौछार का ही एक प्रकार है जिसमें बिजली की चमक तथा मेघों की गरज भी रहती है। वायुमंडल में तड़ित विसर्जन लाइटनिंग डिस्चार्ज तभी संभव होता है जबकि उष्णाद्र वायु में तीव्र संवहन क्रियाएं पाई जाएं। अनेक मौसम वैज्ञानिकों ने तड़ित झंझा को वायुमंडलीय अस्थिरता से उत्पन्न प्रचंडतम बौछार माना है। ऐसे भीषण तूफान के आने पर भूतल पर मौसम के अनेक तत्व एक साथ पाए जाते हैं जिनमें भीषण वर्षा, उपल वृष्टि, वायु के तीव्र झोंके तथा तापमान में आकस्मिक गिरावट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐसे झंझावतों के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की अधिकांश मात्रा आरोहण करती हुई आर्द्र वायु में संघनन कंडेंसेशन और संघनन फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। इनका विकास कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस मेघों से होता है। इनमें जब